ओम शांति। एक बार हम सब मिलकर उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में यज्ञवत्सों को ओम की ध्वनि कराते थे। पहले अंदर एक गहरा श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेकर उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ज्ञान के सागर शिव बाबा की प्रिय संतानों, मीठे भाइयों और बहनों, मुझे आज बताया गया था कि बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव और उसके बारे में कुछ आपस में चर्चा की जाए। तो जब ये टॉपिक सुना तो नेचुरली मेरी बुद्धि में वह संपूर्ण आत्मा घूम गई जो कि ज्ञान में आने के बाद बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का सदैव अनुभव करती रही और कराती भी रही। कौन होगी वो आत्मा? साकार ब्रह्मा बाबा। शुरू से तो देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन 1962 में जब ज्ञान में आए तो 62 से लेकर 69 तक, 69 तक साकार ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का भी काफी मौका मिला। और पग पग पर बाबा बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव जो भी बाबा के सम्मुख आता था उसको कम से कम कुछ समय के लिए तो अवश्य ही करा देते थे। हमें मालूम है, याद आता है कि जब भी बाबा के सम्मुख आते थे हम लोग तो बाबा ऐसे हाथ फैला देते थे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, और बस बाबा की दृष्टि पड़ते ही हम सब लोग देह का भान भूल करके देह के बंधन से मुक्त होकर जैसे एकदम बाबा की बाहों में खींचे चले आते थे। तो सबसे पहला उस वक्त न कोई विशेष ज्ञान होता था, न कोई परिचय होता था विशेष, लेकिन बाबा में ऐसा चुंबकीय आकर्षण था, पवित्रता का आकर्षण था कि बस बाबा की बाहों में गए और तुरंत विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। तो पहला तो मुक्त होने का ये अनुभव सभी बच्चे करते थे जब भी मिलते थे बाबा से, कि एकदम जैसे हम शरीर के बंधन से मुक्त हो गए, बिल्कुल विदेही हो गए। कोई ज्ञान नहीं होता था चाहे विशेष विदेहीपन क्या होता है, लेकिन अनुभव होता था शरीरी हो गए। और कैसे पता चलता था? क्योंकि थोड़े समय बाद फिर बाबा थोड़ा थपथपाते थे सिर पर, आओ बच्चे आओ आओ आओ। तो इस तरीके से जैसे कोई आत्मा शरीर से निकलती नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस जैसे शरीर से विड्रॉ हो जाती है थोड़े समय के लिए, और फिर बाबा जब इशारा करते थे फिर जैसे देह के अंदर अपने को अनुभव करते थे, बाबा मुंह में टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, नाम पूछते थे, कहाँ से आए हो, क्या करते हो आदि आदि जो कुछ भी, और जो कुछ शिक्षा देनी होती थी वो देते थे। तो पहला पहला ये अनुभव बाबा हर बच्चे को, जो भी बाबा के संपर्क में आता था उसको ये अनुभव होता था, ये शरीर से भी बंधन मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था का। बस जैसे और सब कुछ भूल गए, मैं और बाबा, बाबा मेरा अलौकिक पिता, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक, और मैं जैसे बाबा का बच्चा, छोटा बच्चा भी बाप की गोदी में जाकर, माँ बाप की गोदी में जाकर बिल्कुल निसंकल्प हो जाता है, उसे कुछ भी कोई भय नहीं रहता। तो बस एक ये स्थिति का अनुभव। तो ये क्यों होता था सबको? क्योंकि बाबा ने उस स्थिति का अनुभव किया हुआ था। और बहुत समय तक आप सबने सुना भी होगा, बाबा ने लिख लिख के भी पक्का किया हुआ था ना, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, आदि आदि ये सब चीज। तो ये पक्का किया हुआ था बाबा ने। तो जिसकी तरफ भी देखते थे बाबा, दृष्टि देते थे, वो भी थोड़े समय के लिए एकदम आत्मा अनुभव करने लगता था, मैं आत्मा हूँ विदेही। दूसरी बात कुछ बोला क्या किसी ने? दूसरी बात फिर बाबा से जब मिलते थे, बाबा पूछते थे क्या नाम है बच्चे, परिचय पूछते थे स्वाभाविक। तो बच्चे परिचय अपना बताते थे, जो भी नाम आदि होता था। मैं भी पहली बार जब मिला तो बाबा से 62 में कानपुर में, बाबा कानपुर आए हुए थे, पहले बाबा टूर किया करते थे, कई बार बीच बीच में जाते थे, बच्चे निमंत्रण देते थे, बाबा आते थे और बाबा से मिले। तो हम तो लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वहां से सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि बस में जाएंगे कानपुर में, बाबा से 2-3 घंटे का रास्ता था बस का। तो सुबह जल्दी जाने का प्रोग्राम था, लेकिन निकलते निकलते लेट हो गई, और जब तक पहुंचे तब तक बाबा की मुरली तो समाप्त हो गई थी, लेकिन बाबा सभी बच्चों के सामने बैठे हुए थे, और मुरली के बाद जैसे कुछ रू रूहान कर रहे थे। इतनी देर में सब लखनऊ वाले आए बस में। तो तब हम तो बहुत यंग थे, 16-17 साल के थे, और बाबा सबसे मिले एक एक करके, हमारा भी नंबर काफी अंत में आया, और उसके बाद बाबा ने दृष्टि दी। बाबा ने कहा आओ बच्चे, बाबा बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो जब बाबा ने कहा तो हम तो लौकिक रीति से ही समझे, हमने कहा बाबा बस लेट हो गई, आना तो पहले था लेकिन इतना 1-1.5-2 घंटा बस लेट हो गई। अच्छा बस लेट हो गई, बाबा बड़ी गई है दृष्टि से, लेकिन बाबा तो बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो देखो बाबा का भाव क्या था, क्या भाव होगा, कलप पहले के हम, हाँ कलप पहले के बिछड़े हुए हम सब बच्चे हैं, और कलप के बाद मिल रहे हैं, तो बाबा जैसे इतना समय से हम बच्चों का इंतजार कर रहा था। बाबा की हर बात में कोई ये रहस्य होते हैं। फिर बाबा ने रहस्य बताया, और बाबा से मिले, बाबा ने पूछा क्या नाम है, तो हमने बताया हमारा लौकिक नाम एक्चुअली श्री है, जैसे होता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो श्री सरनेम जो है सिंगल है। तो बाबा को बताया तो बाबा ने फिर कहा बच्चे क्या नाम, तो हमने और थोड़ा लाउडली बोला कि भाई ये श्री, तो बाबा ने कहा अच्छा श्री। तो बाबा तो बड़े विनोदी स्वभाव के भी थे, और सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी बाबा जिन बच्चों से मिलते थे उस जैसा ही हो जाते थे, बुजुर्गों से मिलते थे बुजुर्ग जैसा व्यवहार, यंग से मिलते थे तो यंग जैसा, बच्चों के साथ मिलते थे तो बच्चे जैसा। तो बाबा ने बस उसी विनोदी स्वभाव में बोला कि आओ आओ दादी, गंगे दादी, तब गंगे दादी वहां पर थे, और आओ दीदी आओ दादी सबको, कि देखो एक बच्चा बाबा के पास आज आया है, नया मिला है, जो श्री है, श्रेष्ठ है, बाबा से भी ऊंच है। विनोदी स्वभाव, ऐसा कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं, लेकिन विनोदी बाबा हर बच्चे का दिल जैसे जीत लेते थे। फिर बाबा ने बताया देखो बच्चे, अभी तो कोई भी श्री हो नहीं सकता, बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता, तो और कोई भी इस दुनिया में नहीं, क्यों? क्योंकि श्री तो देवताओं को कहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, क्योंकि उनके शरीर भी विकारों से पैदा नहीं होते, निर्विकारी होते हैं, और इसलिए तो और आत्मा भी उनकी पवित्र होती है। इसीलिए अब से बाबा तुम्हें मोहन नाम देता है, तो मोहन हो और श्री जैसा तुम्हें बनना है। श्री माने श्रेष्ठ, आत्मा भी पवित्र बनानी है और शरीर भी पवित्र बनाना है। तो इस तरह बाबा हरेक बच्चे को वर्तमान जीवन की बात भुला करके नया जीवन शुरू करने की प्रेरणा देता था। किसी का नाम अगर कोई माया देवी है मानो, तो बस बाबा कहता अब माया का क्या काम बच्ची, अब तो तुम्हें ऐसा लक्ष्मी गीता कोई भी जो भी बाबा नाम उपयुक्त समझता था वो बता देता था, जिससे हमेशा ज्ञान की बातें ही याद रहे। तो ये भी बंधन मुक्त की निशानी है। हम पुराने देह देह के संबंध में हमेशा लटके रहते हैं, तो भाव क्या है? तो बाबा अक्सर करके अगर कोई बात विशेष समझाना चाहता था तो पहला नाम से ही शुरू करता था। और पहले तो बाबा ने बहुतों के नाम बदले, सबका सुना होगा, दादियों का भी और कोई कोई बच्चों के भी नाम बाबा बदलते थे। अपना पुरानी बहने चक्रधारी बहन वगैरह हैं या और भी कई बहनें हैं। तो इस रीति से तो भाव क्या होता था कि हम अपना पुराना जीवन जो है वो भूल जाएं और बस आज से जब से मैं ज्ञान में आई हूँ आत्मा, मेरा ये नया जीवन शुरू हुआ है। तो ये फिर देह के संबंध उन सबसे मुक्त होने की विधि बाबा बताते थे, क्योंकि बार बार जब खुद का नाम ये स्मृति में रहेगा दूसरे भी उस नाम से बुलाएंगे तो नाम की बात होगी, या फिर साथ ही साथ अगर नाम नहीं भी बदला तो नाम के अलावा हमारा जीवन तो परिवर्तन हो जाता है। तो जीवन मुक्त अवस्था, एक कुछ दिन पहले ही बाबा ने एक मुरली में कहा था ब्राह्मण जीवन भी जीवन मुक्ति की अवस्था है, अभी कुछ हफ्ते पहले 10 दिन पहले। तो ब्राह्मण तो हम सब ही हैं, तो ये जीवन मुक्ति की अवस्था यहीं से हमारी शुरू हो जाती है। ये नहीं कि सिर्फ सतयुग में ही हम जीवन मुक्ति और मुक्ति का अनुभव परम धाम में करेंगे, नहीं, वो तो आत्मा जब शरीर के बिना होगी और सतयुग में दूसरे शरीर में, लेकिन अभी ही इसी शरीर में हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। इसलिए बाबा चाहता है तुम ब्राह्मणों की जीवन मुक्ति अवस्था अभी से ही शुरू हो गई है, ये हम न भूलें, भले मुक्ति जीवन मुक्ति वहां तो मिलेगी। तो एक ये स्थिति बाबा की देखी कि बाबा जब भी आते थे, जाते थे, मिलते थे कहीं पर, बस जीवन मुक्ति की, और हमेशा बाबा टहलते भी थे ना कभी मधुबन के आंगन में, तो बस हाथ पीछे करके और बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हल्के बस चलते थे, जैसे देह में यहाँ है लेकिन है जैसे देह से न्यारे, बिल्कुल ऐसी अवस्था। और बाबा कई बार बाबा गहन सोच में होते थे, बच्चे कोई पूछते थे बाबा आप बहुत सोच में लगते हैं, क्या सोच रहे हैं? कि बच्चे अब क्या, अब तो बस फरिश्ता बनना है, इस देह को छोड़ के जाना है, इसीलिए बाबा उसी स्थिति का भी इस जन्म में अनुभव करने का प्रयास कर रहा है। बहुत धीरे 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 चलते थे, आपने वो चित्र भी देखा होगा बाबा का ऐसा है, तो बिल्कुल जैसे खोए खोए से एकदम है यहाँ। कई बार हम लोगों की भी ऐसा होता है कि कोई सामने से व्यक्ति निकल भी गया तो भी जानकार भी है, फिर भी ख्याल ही नहीं रहता, क्योंकि हम दूसरे विचारों में अगर खोए हुए होते हैं। तो इसलिए ये स्थिति का अनुभव भी बाबा हम बच्चों को, चूंकि यहीं पर कराते रहना चाहता है, तो इसीलिए समय निकाल के एक ये ऐसा अनुभव हम जरूर करें। तीसरी बात, बाबा से मिलने जब कोई भी पार्टी वगैरह आती थी तो बस पार्टी को पहले से समय दिया होता था कि मानो 10 बजे ये दिल्ली की पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे बम्बई की, 11 बजे कलकत्ता की, आदि आदि ऐसे। और बाबा मधुबन, तब तो पांडव भवन ही था, तो पांडव भवन में बाबा मिलते थे। अगर कम लोग होते थे, 2-3 लोग ही होते थे, तो कई बार बाबा अपने कमरे में भी मिल लेते थे, कुछ और ज्यादा 4-5 होते थे तो झोपड़ी में भी, जो झोपड़ी अभी तो बहुत रिफाइन बना दी है, पहले तो फूस की बनी हुई वैसे झोपड़ी होती थी, तो वहां मिलते थे। और ज्यादा होती पार्टी, 10-15 की होती थी पार्टी, तो फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। ये 3 जगह बाबा के मिलने की होती थी, तो जो टाइम दिया होता था उस टाइम के मुताबिक ब्राह्मणी आती थी उस जगह, और बस आती थी, बस देखती थी बाबा एकदम बैठा है लेकिन जैसे खोया हुआ बैठा है, है आंख खुली हुई है, कोई नींद भी नहीं है, लेकिन जैसे देह से न्यारा होके बैठा है। वो आती थी बाबा के कमरे में, बाबा के कमरे में आके फिर कहती थी बाबा बाबा, तो बाबा को थोड़ा सा जैसे एक जर्क जैसा लगता था कि हाँ बच्ची बोलो, तो बताती थी कि बाबा मैं फलानी जगह से पार्टी लाई हूँ, आए हैं और आपके पास आए हैं, पार्टी बाहर है, बुलाऊं पार्टी को? तो बाबा हाँ हाँ बच्ची, तो पार्टी को बुलाते थे और सब पार्टी जैसे आके बाबा के सम्मुख बैठ जाती थी, फिर बाबा एक एक से मिला करते थे। तो जब पार्टी आती थी सबसे बाबा मिलते थे एक एक से, टोली भी खिलाते थे हर एक के मुंह में, और हालचाल भी पूछते थे, और किसी को कुछ पूछना होता था वो भी बाबा से पूछ लेता था। फिर वो पार्टी जाती थी और मानो 10-20 तक, 10-25 तक पूरा हुआ, जब 10 बजे अगर पार्टी आई, फिर 5 मिनट का समय बचा हुआ होता था कि दूसरी पार्टी आएगी, तो फिर बाबा बस एकदम देह से न्यारा हो जाता था। तो एक 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 मिनट बाबा यूटिलाइज करता था, वो 5 मिनट मिला वो भी बीच में यूटिलाइज की, देह से न्यारे हो गए, और जब ब्राह्मणी आई उसने पुकारा तब एकदम जैसे देह में आते थे। तो ये अभ्यास जो है, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। और बाबा ने कहा है अंत समय ये ही अभ्यास काम आएगा कि जब चाहे हम देह में आए पार्ट बजाएं और जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाए। ये पार्ट अंत समय बहुत बहुत काम आएगा ये अनुभव। तो अभी भी बच्चों को बस जब कोई कार्य करना है देह में आए कार्य किया और थोड़ा भी समय मिला देह से न्यारे हुए बाबा के पास चले गए। तो देह से न्यारा होने का पार्ट और देह में आने का पार्ट, इस पार्ट का अभ्यास बहुत पक्का और जरूरी है। क्योंकि अंत समय ये पेपर सबके सामने आएंगे। कौन सा पेपर विशेष करके? ये शरीर का पेपर, ये अंतिम पेपर है। पेपर तो हम सब यहाँ अनुभवी बैठे हैं जीवन में, जब से ज्ञान में आए हैं कोई ना कोई पेपर आते ही रहते हैं, और वो आए तभी तो हमें पक्का बनाते हैं। और जितना जितना हम पक्का होते जाते हैं उतना उतना हम अपनी कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए ये देह से न्यारा होने का अभ्यास और जब चाहे देह में आने का अभ्यास, ये भी देह के बंधन से न्यारा। क्योंकि अंत समय में कहते हैं, वैसे भी बाबा ने कहा है ना, हम सब जानते हैं, अंतमति सोगति। हमारा सबका पुरुषार्थ उस एक क्षण के लिए हो रहा है जब हम इस शरीर से आत्मा निकलेगी और उस क्षण को हम सफल करने के लिए ही ये अभ्यास कर रहे हैं कि अंत में और किसी की भी स्मृति ना रहे, ना देह की ना देह के किसी बंधन की, वस्तु की, व्यक्ति की, संबंध की, वैभव की, कोई भी स्मृति ना रहे। क्योंकि जैसी और दूसरी अगर स्मृति हुई फिर वैसा ही हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो बाबा कह के नहीं बताते थे, बल्कि बाबा अनुभव करवा करके बच्चों को बताते थे। जो बाबा ने भी कहा, अब लोग सुनना उतना पसंद नहीं करते, सुन सुन के काफी तृप्त हो गए हैं, अब लोग अनुभव करना चाहते हैं। और बाबा चूंकि अनुभव कराते थे इसलिए हम सब लोगों को के दिमाग में वो बात छप गई है, जिन्होंने भी साकार बाबा के साथ पार्ट प्ले किया है या बाबा का अनुभव लिया है। तो एक ये बात इस तरीके से हमें भी क्लियर है कि इस बात का हम थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट भी समय मिलता है, गुलजार दादी भी की अभी क्लास आप लोगों को मालूम होगा, चलो बहुत बिजी रहते हैं, सारा दिन समय नहीं मिलता है, कम से कम 4-5 बार पानी तो पीते होगे ना, प्यास लगती है पानी पियो, उस वक्त बस पानी को भी दृष्टि दे करके पियो। ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसका भी 1-2 मिनट यूटिलाइज कर लो। ऐसे 1-2 मिनट करते भी इकट्ठा करते शाम तक वो भी 15-20 मिनट हो जाते हैं, और फिर जब अपना ये खजाना देखते हैं तो बहुत खुशी का अनुभव होता है। तो आवश्यकता ये बात की है कि अपना 1-1 सेकंड 1-1 मिनट भी सफल करते रहे तो वो हमें अंतिम पेपर की तरफ ले जाने में बहुत बहुत मददगार बनेगा। तो ये बाबा से सीखते थे। और दूसरी बात कि बाबा से जब बच्चे जाते थे मिलते थे तो बस बाबा हालचाल पूछते थे कि हाँ बच्चे क्या हाल है, कैसे चल रहा है, और पूरा सब बात तो बच्चे भी बताते थे। कोई पुरुषार्थ की बात पूछनी होती थी, पुरुषार्थ की बात बताते थे, कुछ और बात बताते थे, और बाबा से प्रश्न करते थे किसी चीज का तो बाबा उसका समाधान भी करते थे। तो धीरे 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 62 के बाद 69 तक हम बहुत बार बाबा से मिले होंगे, लेकिन बाबा धीरे 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 सब समेटते जा रहे थे। पहले बाबा एक एक बच्चे को 10-15 मिनट भी देते थे, बच्चे मिलते थे बाबा से अलग अलग। फिर उसके बाद बहुत कम टाइम और टाइम कम देने लगे, बस आए बाबा, बस बच्चा प्रश्न पूछता था कोई बात, बाबा उत्तर दिया और फिर जैसे जैसे न्यारे हो जाते थे। लेकिन अंतिम समय में हमें ये विशेष सौभाग्य प्राप्त है कि अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद हम ONGC ज्वाइन किया और हमारी आसाम पोस्टिंग हुई। तो बस जब 67 में हमने पास किया और उसी साल हमारे ONGC में आसाम में पोस्टिंग हुई, तो बाबा के पास हम गए। हमारी बहुत इच्छा नहीं थी जाने की, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न में 7 स्टेट है वहां पर, तो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कहीं भी कोई सेंटर तो क्या गीता पाठशाला या कोई स्टूडेंट ही नहीं था। उस वक्त की बात है 67 की। तो जब बाबा के पास गए, हमारे पास दूसरे और 3 जगह के अपॉइंटमेंट लेटर थे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी और एक रिसर्च लेबोरेटरी का भी हैदराबाद का। तो बाबा ने सब देखा तो क्या इच्छा है, तो हम तो चाहते थे कि कहीं ऐसा ही जॉब हो जहाँ पर सेंटर हो। तो हम तो दूसरे 2 के तरफ, क्योंकि या तो हैदराबाद या दिल्ली वहां पर। लेकिन बाबा ने बताया कि नहीं बच्चे, तुम्हें यहाँ ONGC में वहां जाना है आसाम में। तो हमने कहा बाबा वहां तो कोई भी सेंटर नहीं है, वहां तो कैसे पालना होगी। तो बाबा ने कहा नहीं, अभी तक तो बाबा ने पालना की है, अब तुम्हें वहां पर पालना देने के लिए जाना है। अब वहां बाबा के बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं और वहां जाके बाबा की सेवा करनी है। तो देखो जब बाबा ने कहा, अब बाबा ने इतना विश्वास रखा, भले हमें कोई सेवा का अनुभव उस टाइम 67 में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा ने विश्वास रखा, भेजा। और बाबा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं, वहां जाओ, जब तुम्हारी सेवा हो जाएगी तो बाबा समय पर बुला लेगा। ऐसे बाबा ने महावाक्य बोल करके विदा किया। सब नीचे जो बिछाने का होता है वो दिया, ग्रामोफोन रिकॉर्ड वगैरह, सब तरीके से सेंटर के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं उन सब के साथ वहां गए। और ये बाबा की ही कमाल थी कि बहुत जल्दी ही वहां पर 1-2 महीने में ही, बाबा पालना का कितना बड़ा संस्कार था बाबा का, कि यहाँ से हर हफ्ते बाबा लेटर लिखते थे, बच्चे वहां जाओ, लेक के किनारे बैठ के चित्रों के साथ वहां सेवा करो, फलाना लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ वहां। हम सब लिखते थे कि बाबा यहाँ ये मंदिर है, ये है, यहाँ पर बहुत बड़ा जगह का नाम भी शिव सागर था वहां पर। तो इस तरीके से सब लिखते थे और बाबा वैसे ही फिर उत्तर देता था। और बाबा की प्रेरणा होती थी इसलिए सेवा बहुत जल्दी हो जाती थी। तो ये भी एक हम समझे, अभी तो मुरली है, मुरली भी तो भगवान के महावाक्य हैं। तो मुरली में प्रतिदिन जो भी डायरेक्शंस आती हैं, अब सारी तो याद पॉइंट रह नहीं सकते, लेकिन अपने लिए हम कम से कम 1 या 2 पॉइंट एकदम पक्का कर ले उस दिन के लिए, और उस दिन बार बार स्मृति में लाएं। और उस पॉइंट को अगर हम सेवा में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि वो भगवान के महावाक्य और वो पर्टिकुलर पॉइंट बाबा ने जैसे मेरे लिए कही है, हम ये समझें। और हमने देखा शुरू से ही, जब से ही ऐसा होता है तब से जो हम समझते हैं उस दिन उस पॉइंट से संबंधित कोई जीवन में कोई परीक्षा आती है या कोई बात सेवा में उपस्थित होती है और उस पॉइंट को यूटिलाइज करते हैं तो एकदम सफलता अवश्य मिलती है। तो ये जीवन मुक्त अवस्था की तरफ जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं कि बाबा कहता है कि संकल्प ही आपको वो आएंगे जो सिद्ध होने वाले होंगे। अभी तो और भी संकल्प चलते हैं, कोई काम करना है, ये करूं ना करूं, अब करूं बाद में करूं, ऐसे करूं या ऐसे, बहुत सारे। लेकिन जितना जितना हमारी क्लीन और क्लियर बुद्धि होती जाएगी उतना बाबा ने कहा है कि संकल्प पैदा ही वो होगा जो सिद्ध होने वाला होगा, जिसमें कि कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपके कदम उधर ही बढ़ेंगे जिधर वो संकल्प सिद्ध होता है, जिधर आपकी सेफ्टी होगी। तो जीवन मुक्त अवस्था सतयुग में जो अवस्था होगी, सतयुग में कोई व्यर्थ संकल्प तो होंगे ही नहीं, संकल्प ही सिद्ध होने वाले होंगे, सुखदायी होंगे, दुख का नाम निशान नहीं। तो उस अवस्था का अनुभव हमें यहां होना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही तो हम संस्कार लेकर के जाएंगे सतयुग में। इस कारण से अभी से ही हमें ये अभ्यास करना है, जैसे ही व्यर्थ संकल्प की कोई भी श्रृंखला शुरू होती है, पहले एक व्यर्थ संकल्प आता है कोई भी, हम उसकी थोड़ी पालना कर लेते हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह उसकी श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो व्यर्थ संकल्प की हम बिल्कुल पालना ना करें। जैसे कोई विकारी संकल्प होता है ना, तो अभी तो जो जितने पुराने होते चले जाते हैं, तो गुलजार दादी ने भी एक बार संदेश में बोला था बच्चों में, बाबा ने कहा कि एक सब्जेक्ट में तो बाबा बच्चों को सर्टिफिकेट देता है कि बच्चों को विकारी संकल्प तो अब नहीं आते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं। तो इसीलिए विकारी संकल्प भी क्यों नहीं आए, क्योंकि विकारों पर तो हमने अपने ऊपर ही पूरा प्रतिबंध लगा दिया भले, लेकिन मुख्य जो विकार है पवित्रता का, अपवित्रता का, काम विकार का, उसको वो मोस्ट ऑफ द बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में वो कर्मणास पर तो विजय सबने पा ली है, वाचा पर भी, मंशा में भी धीरे धीरे, और बाबा अब चाहता है वृत्ति के अंदर भी, जब मंशा भी चेंज। और इसीलिए ही बाबा रोज की रोज मुरली में जरूर दो चार पॉइंट इसके ऊपर बोलता है, और मन मना भाव, मध्याजी भाव, पवित्रता की बातें आदि आदि। इसलिए बाबा यहाँ पर रोज हमें बंधन मुक्त स्थिति और जीवन मुक्त स्थिति उनका अनुभव कराता है। और कहाँ तक हमें करना है, पहले ये करेंगे तो मानो व्यर्थ संकल्प आएंगे, 10 बार आए मानो एक दिन में, सारे दिन में, तो अगर हम कुछ लिखेंगे नहीं, डायरी में नोट नहीं करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है। स्टूडेंट की भी प्रोग्रेस पता चलती है जब स्टूडेंट लिखता है, टीचर उसे एसेस करता है, नंबर देता है, तो पता चलता है। ऐसे ही हमारी भी स्थिति का हमें खुद आभास हो कितना बढ़ रहे हैं। आज 10 बार व्यर्थ संकल्प आए, जब लिखेंगे तो पता चलेगा, कल फिर 9 बार आएंगे, 5 बार आते हैं, कम होते होते तो पता ही तब चलेगा जबकि हमने कहीं नोट डाउन किया। जैसे विकारी संकल्प या व्यर्थ संकल्प आए तुरंत ही वहां ब्रेक लग जाए। थोड़ा भी अगर उसको हमने फ्रीडम दी ना, तो इसकी तो एक श्रृंखला है और बस चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी आगे। तो इसीलिए बाबा उस जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कराता है। और कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम आसाम में पोस्टेड थे, आसाम में गए और वहां पर सेवा का बहुत बाबा ने अनुभव करवाया। थोड़े समय के अंदर ही, 8-9 महीने, 1 साल के अंदर ही 100 से ज्यादा की क्लास हो गई। क्यों? क्योंकि बाबा खुद कहता है, और ये हमने अनुभव किया, बाबा ने कहा कई बार बाबा कहता है ना, मैं बच्चों देखता हूँ कि समझने वाला बहुत अच्छा आया है और समझाने वाला उतना ट्रेंड नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो बाबा क्या करता है, बाबा प्रवेश करके खुद समझाता है। तो ऐसा हमने कई बार अनुभव किया, क्योंकि सेवा के फील्ड में तो उस समय हम लगभग बिल्कुल ही नए थे। और उसके बाद लेकिन कई बार, और उससे होता क्या था, उसका रिजल्ट इमीडिएटली देखने में आता था। कोई बात समझाई जाती थी तो अधिकतर माताएं बहनें वगैरह आती थी, कुमारियां आती थी, वो ध्यान में चली जाते थे, साक्षात्कार उन्हें होते थे और बस लक्ष्मी नारायण का, बाबा का साक्षात्कार, नई दुनिया का, और काफी देर तक जैसे कि उसी नशे में खोए हैं। और जो बाबा ने पहले दृश्य बताए हैं ध्यान में, नाचना गाना, और वो बिल्कुल देह का बांध जैसे भूल जाना। और भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार बहुत बड़ी चीज मानते हैं भगवान का। सारे शहर में ये फैल गया कि पूरे वहां तो भगवान का दीदार होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है। तो इस तरह धीरे धीरे वहां पर बहुत, और वहां पर आते थे देखने के लिए आते थे, तो ध्यान में सब तो नहीं जा सकते, जाते नहीं, लेकिन जो देखने वाले आते थे, कोई छोटी छोटी भी बच्चियां होती थीं, वो भी ध्यान में जाके जब अनुभव सुनाते थे तो बड़ों को भी सहज ही विश्वास हो जाता था। तो इस तरीके से बाबा बच्चों को वहां पक्का करता था। और जब बाबा को ये होता था कि समझाने वाले में उतने ज्यादा वो नहीं है जितना बाबा चाहता है, तो भक्ति भावना उनमें इतनी होती थी, और मारवाड़ी ही ज्यादा थे वहां पर, तो वो मारवाड़ियों को इस तरह ध्यान में होता था। तो वहां पर 67 के बाद 68 भी था, 69 का भी था। तो देहरादून से हम आए हुए थे उस समय, तो देहरादून में बहन जी का पत्र आया कि भाई यहाँ पर आप अगर आ सकते हो कुछ दिन की छुट्टी लेके आओ, यहाँ म्यूजियम बनाना है 69 में, और यहाँ तो किसी को कोई उस बात का मालूम नहीं है, तो आप इसमें थोड़ी मदद कर देना। तो उन्होंने पत्र लिखा, तो हमने ऑफिस से छुट्टी ली और बाबा को भी पत्र लिखा कि बाबा इस प्रकार से वहाँ बहन जी बुला रहे हैं। तब ना तो ईमेल थे, फोन की भी इतनी सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पर बाबा को लिखा और फिर हम छुट्टी की तैयारी करने लगे। तो बाबा का तुरंत ही मैसेज आया कि हाँ बच्चे वहाँ जाओ, लेकिन पहले यहाँ आओ, मधुबन आओ और तुरंत आओ, जैसे प्लेन से आओ। तो बाबा ने जब ये बोला तो बस फिर एकदम हमें ये विचार हुआ बाबा बुला रहा है, तो चलो। तो हम पहले अपने फादर को भी लिख दिया, लौकिक पिताजी को, वो भी आ गए, और हम लोग दोनों मिलके 17 जनवरी 1969 की सुबह यहाँ पर पहुंच गए। और यहाँ पर तो पहुंचे, लेकिन यहाँ पर आकर के 17 जनवरी को हमने बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी, क्योंकि 18 की रात को तो बाबा ने शरीर ही छोड़ा, कर्मातीत अवस्था। और उसकी पहचान क्या है, हम सबको भी तो कर्मातीत बनना है ना, तो वो जब कि कंप्लीट कोई भी प्रकार का, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा बंधन कौन सा है, मन का बंधन। देह भी भूल जाते हैं, लेकिन मन जो इतनी सूक्ष्म चीज है वो इधर उधर भागता रहता है, तो मन का बंधन सबसे बड़ा है। तो बाबा ने वो अनुभव कराया। 17 और 18 जनवरी को बाबा के पास जब जाते थे तो पहले की तरह हमेशा की बाबा से ये पूछेंगे, तो बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा दृष्टि दी, और हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और बाबा तुरंत कहता था, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, प्रश्न भी बता देता था, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। पहली बात तो प्रश्न भी बता देता था, उससे पहले तो जब भी जाते थे तो बाबा पूछता था, हम बताते थे, लेकिन अंतिम दो दिनों में तो हमने कम से कम 6-7 बार बाबा से मिले होंगे, क्योंकि कोई और पार्टी वाले ज्यादा थे नहीं, हमें ही आते जाते बाबा से मिलने का, झोपड़ी में, कमरे में, कहीं भी। बहुत सौभाग्य मिला उन दिनों में भी, और उससे पहले तो कई बार मिले ही हुए थे, तो इसीलिए बाबा व्यक्तिगत रूप से भी जान गया था। तो बस बाबा के पास गए तो बाबा दृष्टि दी और जैसे अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो ये मन की बात बाबा, हाँ लौकिक में कहते तो है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मन के अंदर क्या चलता है वो फेस से पता चलता है, लेकिन इतना एक्यूरेट कुछ भी जाओ बस बाबा दृष्टि दे के तुरंत, चाहे पुरुषार्थ की बात हो, सेवा की बात हो, कोई भी बात हो, बाबा तुरंत ही बता देता था। और इसी को कहते हैं मन जीते जगत जीत। और ये स्थिति हम सब बच्चों को भी धारण करनी है, क्योंकि अंत समय लोग आएंगे, बहुत इच्छाएं लेके आएंगे, बहुत प्रश्न लेके आएंगे, लेकिन हम लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा, न दुनिया वालों के पास होगा, बहुत बड़ी बड़ी क्यू लगेंगी, लोग आएंगे, तो बस हम उनकी आंखों से उनके मन का भाव पढ़ लें और उनका समाधान कर दें। और ये बाबा की प्रत्यक्षता का एक साधन है कि जितनी बाबा की प्रत्यक्षता, वो लोग तो यही समझेंगे अरे यहाँ पर तो कमाल है, सभी भगवान के रूप हैं, सभी मन की बात जानते हैं। तो इतनी हाइट तक, इतनी पवित्रता तक हम बच्चों को और आगे तक पहुंचना है। तो इस रीति से बाबा का एक बार, दो बार, तीन बार सब हुआ तो बड़ा आश्चर्य होता था, बाबा मन की बात एकदम कैसे जान जाता है। और 18 जनवरी की सुबह बाबा क्लास में आए, क्लास तो नहीं कराई, लेकिन उस दिन बाबा ने सबको योग कराया। और उसके बाद अब बाबा की बात, ये तो बाद में हमें पता चली, बाबा को जैसे ये इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त हो गया था, भीष्म पितामह को जैसे कहते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा ने भी लौकिक दुनिया के हिसाब से जैसे ये आभास हो गया था, तो बस बाबा ने यीशु दादी को बोला आज जितने भी पत्रों के उत्तर लिखाने हो लिखा लो, वो जो जो पेंडिंग काम थे बाबा ने फटाफट उस दिन 3-4 पूरे किए। वैसे तो काफी दिन से बाबा समेट रहे थे, लेकिन 2-3 काम रह गए थे। एक तो ये रह गया था, पहले तो पत्र ही आते जाते थे, इतने ज्यादा फोन और वो सब नहीं होते थे, तो बाबा यीशु दादी ने सब पत्रों के उत्तर लिखा लिए। फिर उसके बाद बाबा ने जो नक्की लेक के पास म्यूजियम है, उस म्यूजियम का बिल्डिंग लेनी थी, लेकिन तब हमारे पास उतने साधन नहीं थे, सब नहीं था, लेकिन वहां से सेवा बहुत हो रही थी, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनी लगाई थी हम लोगों ने। तो प्रदर्शनी जब लगाई हुई थी तो बहुत जो सनसेट से लोग आते थे, बहुत देखते थे, तो सब बच्चों का विचार था कि बाबा वहां पर वो बिल्डिंग को ले ली जाए और वहां परमानेंट कुछ प्रदर्शनी लगाई जाए, म्यूजियम बनाया जाए। तो इतने दिन तक वो पेंडिंग पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद बाबा ने उसी दिन ही उस बिल्डिंग को क्लियर किया, अच्छा इस बिल्डिंग को ले लिया जाए, साइन बाबा ने फाइल में कर दिए। फिर बाबा बस रोज रात्रि क्लास तो 9:30 होती है मधुबन में, शुरू से ही है, सब भोजन आदि कर लेते हैं। लेकिन उस दिन बाबा ने शाम को 6:30-7 ही कहा कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा और सब भोजन करके आए 7:00। तो बाबा ने सबको क्लास में बोला तो सब लोगों ने जल्दी जल्दी भोजन कर लिया, क्योंकि बाबा को मालूम था आज बाबा का जैसे ये अंतिम दिन है और आज बाबा बस बच्चों से विदा लेकर के जाएगा, तो इसीलिए सब बाबा भोजन करके आ गए। और उसके बाद बाबा क्लास में आए, और वैसे बाबा को कभी कभी खांसी आती थी, एज भी 93 ईयर हो गई थी और बहुत ठंडी का मौसम जनवरी में, तो माउंट आबू में उस टाइम तो और भी ज्यादा ठंडी होती थी, तो ऐसा मौसम था। लेकिन उस दिन, उससे पहले भी 17 तारीख को बाबा को काफी तबीयत मतलब ठीक नहीं थी। 18 की सुबह भी ऐसा लगता था कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन 18 की शाम को जब बाबा ने मुरली चलाई तो ब्यूटी ये देखने को मिली कि न तो एक बार बाबा को खांसी आई, न एक बार भी गला साफ करने की जरूरत पड़ी, और कुछ नहीं, बस इतना बढ़िया बाबा ने फोर्सफुल मुरली चलाई कि बस वो मुरली चलाते हुए इस बात का प्रतीत होता था कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर खांसी और कफ, इन सब के ऊपर जैसे योग बल ने संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली, एकदम ऐसा अनुभव होता था। और उसके बाद फिर बाबा ने मुरली चला के बोला, अच्छा बाबा बच्चों से दरवाजे के पास जाके बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये अक्षर बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, विदा लेता है, छुट्टी लेता है, बस बाबा गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जैसा परिस्थिति होती थी वैसा क्लास करके चला जाता था। लेकिन गुड नाइट करने से पहले बाबा बच्चों से बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा करके बाबा गए। और फिर बाबा ने जैसे दादी जी के हाथ में हाथ और नैन मुलाकात करते हुए विदा कर लिए। तो देखो ये अंतिम अवस्था होती है कर्मातीत ऐसी, क्योंकि हमें अनुभव है उस दिन ऐसे ही हम भी सामने ही क्लास में बैठे हुए थे और बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चला रहे थे, तो मुरली सुनते सुनते रात्रि क्लास में बस हमें विचार आया कि मुरली सुनते सुनते कि बाबा कुछ हमारे लिए बोले, कुछ इच्छा होती है ना। अभी भी अव्यक्त बाप दादा जब आते थे तो भाई बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, स्टेज पर जाने को मिल जाए, होता था ना बच्चों को, तो ऐसे ही हमें उस वक्त हुई। अब हमारे मन में इच्छा हुई और बाबा की तो कर्मातीत अवस्था, मन जीते जगत जीत की स्थिति, तो तुरंत ही बाबा के मन में अपना एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं था, तो तुरंत ही बाबा ने उस बात को कैच किया होगा कि इस भक्त की, क्योंकि द्वापर युग से तो हम ही भक्त हैं और बाबा तो कृष्ण के रूप में सतयुग त्रेता में होता है और उसके बाद ये भक्तमाल शुरू हो जाती है, तो इस रीति से बाबा तक बात पहुंची होगी संकल्प में। और बाबा ने तुरंत ही नाम लेके 18 जनवरी की रात्रि क्लास में और बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चार दिए, बहुत ही प्रेरणादायी थे हमारे लिए। अभी तक भी वो प्रेरणादायी महावाक्य समय प्रति समय याद आते हैं तो पुरुषार्थ में पुनः और तीव्रता हो जाती है। तो भाव क्या है कि कर्मातीत अवस्था जैसे बाबा ने पाई, ऐसा हम सबको भी बनना है और हम सब भी उसी राह पर ऐसे बाबा के चलते रहे। और ये तभी होगा, जीवन मुक्त अवस्था तभी होगी जब ये जीवन बंधन मुक्त अवस्था से पहले हम पार होंगे। और फिर जीवन बंध की कोई भी बात रही होगी, उनसे पार होते होते जीवन मुक्त की तरफ बढ़ेंगे। और जब वो अवस्था के संस्कार हमारे में आ जाएंगे तो फिर हम सूक्ष्म वतन होते हुए कैसे परम धाम जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव करते हुए। और यहाँ पर मैं एक बात बस और बताना चाहता हूँ मम्मा की, कि मम्मा ने जब 65 में शरीर छोड़ा तो जब मम्मा ऊपर सूक्ष्म वतन में गई, तब तो साकार ब्रह्मा बाबा थे, तो मम्मा जब गई तो ऊपर जाके वहां पर जो सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेश था, उसमें बाबा ने पूछा कि बच्ची कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा तो जैसे सदा की तरह चुप रहते थे, वो चुप रहे, कुछ बोला नहीं। फिर बाबा ने पूछा तो मम्मा ने कहा नहीं बाबा, उसका तो कोई अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची अभी तुरंत नीचे जाओ, तुम्हारा शरीर नीचे रखा हुआ है और हिस्ट्री हॉल में है, सब योग भी कर रहे हैं वहाँ, तो तुम जाओ और शरीर में जा करके कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आओ। तो मामा नीचे आई होगी, आई, और उसके बाद थोड़े समय बाद जब मामा ऊपर गई वापस, तो बाबा ने पूछा बच्ची अनुभव किया कर्मातीत अवस्था का शरीर में जाके? तो मामा ने कहा नहीं बाबा, नहीं करा। क्यों बच्ची? क्योंकि बाबा जब मैं गई नीचे तो शरीर तो ठंडा हो चुका था और मैं शरीर में प्रवेश भी किया, लेकिन उसके बाद तो शरीर में कोई चुरपुर नहीं हुई, कोई एक्शन में शरीर नहीं आया, क्योंकि शरीर तो ठंडा हो चुका था। तो बाबा ने वहां पर ही वही राज खोला, देखो बच्ची तुमने बहुत सेवा की यहाँ पर, तन मन से सब, मन से सब, लेकिन अब तुम्हें जैसे पुनर्जन्म लेना पड़े और जन्म लेके नए जन्म में तुम और बहुत सेवा करोगी, और जैसे लोगों को धन समर्पित कराते हैं तो बहुत उसके द्वारा भी तुम्हें प्रजा बनानी है, तो इसलिए अब तुम्हें जैसे नया पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और बचा हुआ सेवा का पार्ट पूरा करना पड़ेगा। तो फिर बाबा ने जैसे उसके बाद, तो ये हम सबके लिए भी वैलिड है कि इस अंतिम शरीर में चाहे हमें बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, कुछ भी हो, हमें इससे कंटालना नहीं है बिल्कुल। अरे इससे अच्छा तो ये शरीर छूट जाए और नया शरीर मिल जाएगा तो और सेवा करेंगे। नहीं, ये शरीर से जितना भी मेरे सामर्थ्य है मैं अधिक से अधिक सेवा करूं किसी भी हालत में। बाबा ने कहा अगर जी यहाँ शरीर चलाने की कला नहीं आई तो वहां पर इतनी बड़ी किंगडम कैसे चलाएंगे। तो इसीलिए अभी आवश्यकता है जितना भी शरीर में व्याधि हो, बाबा ने भी सही, मामा ने भी सही, दादियों ने भी कितनी कितनी बीमारियां कितने सहे, लेकिन फिर बाबा ने जब समय आया उनके मन में कोई ये संकल्प नहीं कि बस बाबा अब मेरा शरीर छूटे, नहीं, वो कभी अपने मन में संकल्प नहीं लाना, जिससे कि अंत समय तक हमारा पुरुषार्थ का पार्ट चलता रहे और हम पुरुषार्थ करते करते जाए। जैसे भीष्म पितामह कहे ना, इच्छा मृत्यु का वरदान, तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को जैसे इच्छा मृत्यु का, ऐसे ही हमें भी इच्छा मृत्यु का वरदान से जैसे शरीर छोड़ना है, और वो तब होगा भारतवासियों का, तो बाबा ने विशेष बताया है ना कि जब उनका यहाँ पर इतना अर्थक्वेक, प्राकृतिक आपदाएं, ये पांचों तत्वों की जब ये अति होंगी, बहुत हलचल में आएंगी, तो बाहर बड़ी हलचल हो, अति हलचल, लेकिन अंदर आपकी स्थिति अति अचल हो। बाहर जितनी हलचल हो लेकिन अंदर अचल स्थिति होगी, तो वो ही आपको कर्मातीत अवस्था का अनुभव कराएगी। तो इसीलिए मामा को भी जैसे पुनर्जन्म लेना पड़ा और आए, इसी तरह हम सबको भी बस इस अंतिम जन्म में यही पुरुषार्थ करना है कि हम जब शरीर छोड़े बाबा आपके पास आए कि आए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी करा, और उसके बाद बाबा जैसे बाबा के पास, शिव बाबा के पास चले गए, तो अब वो समय चल रहा है। तो इस तरह इच्छा मृत्यु के लिए हमें प्रकृति के तत्वों को भी जैसे उनसे अपने संस्कार मिलाने होंगे, और अभी तो समय नहीं है, अभी हम सब लोग योग करेंगे, साढ़े सात तक पौने आठ तक, और लेकिन मुख्य ये हमें करना है, क्या करना है कि अब हमें एक एक करके देखना है, एक एक तत्व के साथ अपने संस्कारों को मिलाते चलना है, जिससे ये तत्व अंत समय हमारे सहयोगी बने, हमारे मृत्यु का कारण न बने। और जैसे जल के अंदर शीतलता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण, अर्थ के अंदर पृथ्वी में दातापन का गुण है, पृथ्वी सब देती है, ऐसे हर तत्व का आप अपने अंदर सोचना और फिर अपने संस्कारों को उस तत्व के संस्कार से मिलाते हुए चलते रहेंगे तो हम सब भी जब बाबा की तरह कर्मातीत होके परम धाम तो सबको इकट्ठे जाना ही है, इसीलिए उसके जाने की तैयारी करनी है और बाबा को फॉलो करते हुए, जैसा आज की मुरली में वरदान था, साकार ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए हमें भी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है। ओम शांति, ओम शांति।